तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सोखा मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार तुम दाता दुखी बंजना, मेरी करो संवार। जय इब के सत गुरु मिले, सब दुख आखों रोए, चरण ऊपरे शीश धरो, कहूं जो कहनी होए। अब गुण किए तो बोत किए, करत न मानी आर, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, गौर पिता को लाज। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक, कबीर साहब की असीम कृपा से ये सत्संग समारोह समापन प्रारंभ होते हैं और उसी की रजा से ये संपन्न होते हैं और उन्हीं की कृपा से ये पुण्य आत्मा अपने परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए कुछ समय प्राप्त करते हैं। कबीर गरीबदास जी कहते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात लेंदा, उस परम पिता के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात उन्हीं की रजा से हमें ये शुभ समागम श्रवण करने का, इनमें सेवा करने का, दान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भैया शोर नहीं करें, प्रेम पूर्वक बैठ जाए, सभी कोई नहीं बोले, इन बच्चों को चुप कराओ। ये मार्ग जो आपको प्राप्त हुआ इस कलियुग के अंदर, इस सत मार्ग को ऋषि लोग भी चले गए बेचारे, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। और अब कलयुग में ये रजा बख्शी परमेश्वर ने और जिन पुण्यात्माओं को ये शुभ अवसर मिल रहा है वो आ रहे हैं सत्संग में और ये नाम उपदेश मिल गया उनका, धन्य है उनके माता पिता। पिछले जन्म जन्म के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आज बेशक ही हम कोई मजदूर नजर आता है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, और बेशक तो उनके आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पिछले जो भक्ति के कर्म है, भक्ति के जो कमाई है, भक्ति की वो धन है, वो बहुत ही अनगिन है। कितना है, कबीर परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद गरीबदास जी महाराज ने अपने परमात्मा की सच और कलम तोड़ महिमा गाई है और सच गाई है। क्या कहा है, लखबर दूरा सूरा दूर ही, लखबर सावत दे और लखबर यति जिहान में, जब कई सतगुर शरण आ गए। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो जन्म जन्म के, ये लखबर सूरा जोग ही, लाख बार आपके ऐसे जन्म हुए हैं इस कल काल के लोक में, आप इतनी पुण्य आत्मा रही हो, कभी जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत अच्छे किसी युग में हमने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, साधनाएं की हैं, और जैसे अब आपको सद्भक्ति मिल गई और आप पार ना हुए, पार क्यों ना होगी, क्योंकि आप में गफलत होगी, आपको सुख हो जाएगा, इतना सुख हो जाएगा कि आप परमात्मा के दूर होते चले जाओगे। कौन? जो सत्संग से दूर होंगे, जो सत्संग नहीं सुनेंगे, विचार नहीं करेंगे इन सत्संग की बातों पर, तो वो दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये परमात्मा दयालु है, सुख सागर है, यानी इतना सुख दे 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 देता है कि जीव पर गणना नहीं होती, फिर ये फूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, और जिसके कारण फिर ये धीरे धीरे भक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्राणी काल के हाथों चढ़ जाता है, फिर इसको ये खूब प्यार देता है, तेरे को देव बनाऊंगा, लोक में छाटकर पृथ्वी का राजा बना देगा, फिर यहाँ पर इतने सूरमा बन जाएंगे, बिल्कुल इतने मजबूत जल होंगे, और ऐसे, और फिर कभी किसी जन्म में बड़े अच्छे यति होंगे, दुनिया में महिमा हो जाएगी। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, तुम आज के नहीं है, हम असंख जन्म असंख युग, ये तो कलयुग का एक 20-30-40 साल का जीवन हमें अब याद है, परमात्मा को हमारी पिछली सारी बैक हिस्ट्री याद है। वो बता रहे हैं कि लखबर सूरा दूध ही लखबर सावत दे, सूरमा जो होता है वो अपने अपने धर्म कर्म के लिए वो अन्याय नहीं सहन कर सकता, और किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, वो किसी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखता, दूसरे का धन ही हड़प करता, लेकिन अगर कोई अन्याय करे तो उसको सहन नहीं कर सकता। कहते लखवर सूरा दूध ही सूरा माने सूरमा बहादुर, और लखवर सांवत दे होती है, जैसे घुटनों से नीचे तक हाथ होते हैं जिन प्राणियों के, वो कभी 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 सदियों पर्यांत कोई एकाद पुण्य ऐसी होती है, उसके घुटनों से नीचे दोनों हाथ होते हैं, उसको सांवत बोलते हैं, और वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। पिछले जन्मों का ये ऐसे लक्षण होते हैं। लखबर सूरा दूध ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में हनुमान जैसे यति नगर, कितनी बार लाख बार रह चुके हों, तब सतगुरु शरणा ले, जब ये कबीर परमात्मा आपको अपनी शरण में लेता है। अब ये बातें आपको तो ज्ञान नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे, हम तो ऐसे ऐसे स्थिति में हमारा दिमाग चक्कर लगा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं, जैसा हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से ये सोच रहे थे कि जैसे एक जन्म होया, अब जब फिर मनुष्य का जन्म हो जाएगा, ये साथ कर लेंगे अपने, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध सोच थी अपनी, भगवान के कानून के विरुद्ध सोच थी, भगवान की वाणी के विरुद्ध ही हमारी सोच थी, जो गलत थी। और परमात्मा ने हमारा सारा ज्ञान है कि तुम कितनी अच्छी पुण्यात्मा पहले रही हो, जो आज परम पिता की शरण में आ गए हो। आज बेशक तो गरीब है, जिसकी झोपड़ी भी टूटी हुई हो और मजदूरी करता, उसके बच्चे भी कच्चे मकानों में रहते हो, लेकिन ये शरण मिल गई इसको, और वो करोड़पति अरबपति जो प्रधानमंत्री हो, वो भी शरण में है इस मार्ग में, तो दोनों की भक्ति वाले नंबर तो, नाम की कमाई वाले नंबर तो वो तो बराबर है, लेकिन पुण्य की कमाई तो दिन और रात का वो फर्क है, वो चलेगा कोई बात नहीं, वो चलेगा, इसके बिना कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ इतनी जरूर आती है अगर अब भी कोई थोड़ा समझ जावे, अपने खुला हाथ कर ले परमात्मा के चरणों में, तो उसके लिए क्या होगा, स्त्री चौंक भर ले गई नदी नगर चौनी, दान दिए दन घटे नहीं, यो कह रहे साहेब कबीर। दान कहाँ जो है सुपात्र को, कुपात्र को दिया हुआ दान हानि करता है, सुपात्र में गुरु बिन माला फेरे थे, गुरु बिन देते दान, गुरुजन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिना, गुरु को, गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता, अगर गुरु हो तो, लेकिन गुरु की परिभाषा, गुरु की महिमा अगर आपको पता लग गया तो आपको शायद संसार में से गुरु नजर नहीं आएगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं
कि गोरख से जानी घन ये सुखदेव जी जहान सीता की बहु भारिया भाई अंत दूर अस्थान।
क्या बताते हैं परमात्मा कि गोरख से जानी गणे और सुखदेव जी जहान और सीता की बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरखनाथ जैसे विद्वान ज्ञानी आत्मा बहुत मिल जाएंगी और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे। यति का अर्थ होता जो पर नारी की तरफ सोचने में विनाश होता है और जति वो होता जिसमें जो शादी करवा ली और अपने नेक नीति से गृह व्यवहार में रहता है उसको जति कहते हैं। यति वो होता जो बिल्कुल स्वप्न में भी उसके मन में कभी खोट ना आया हो किसी प्रकार का और शादी ना करवा रखी हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी जन सुखदेव यति जहान कितने बोलिए ये पीजिए और सीता की गौभारिया सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कोई कमी नहीं बहुत है। लेकिन संत दूर स्थान परम संत मिलना ये बहुत दूर घर है भाई। पूरे संत का मिलना बहुत दूर घर है। इसके लिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा से परिचित थे। गरीबदास जी महाराज उनका स्वरूप बने। शुरू क्या कहते हैं करोड़ों में कोई है नहीं रह झूमकरा अरबों में कोई गर्त सुना रह झूमकरा। एक पंजाब का पंजाब से भक्त आत्मा आया था। उन्होंने गरीबदास जी के महिमा सुनी थी किसी उनके शस्त्र के दर्शनार खाए थे। तब उन्होंने सत्य ज्ञान सुनकर जब कहा था सरदार जी ने कि ये परमात्मा ये बात तो आज तक हमारे को किससे नहीं बताई किसी ने नहीं ये ज्ञान दिया। तो गरीबदास जी ने कहा था कि ज्ञान में देने वाला तो बहुत देर दूर से मिलेगा बाकी वाणियों में प्रमाण अभी भी आपके विद्यमान है लेकिन इन वाणियों को समझना ही सबसे अच्छी बात है। क्या बताते हैं कि करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा तुझे करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस सत्य ज्ञान के बताने वाला अरबों में मिलेगा तुझे कोई संत अरबों में। अब देख लो अरबों का अर्थ है कि बिल्कुल नहीं अरबों में कोई होगा तो समझो बिल्कुल नहीं अर्थात तो ईश्वरीय कृपा से ही आपको निहिर होगी। अब अरब संत कैसे होते हैं जैसे एक गांव में अगर 10,000 की आबादी है तो उसमें मनमा में 8,000 गुरु पाओगे तो 2,000 का बालक बुलक होंगे बाकी 8,000 बुढ़े बड़े जवान होंगे। वो कैसे गुरु होते हैं जैसे एक पड़ोसन दूसरी दौरे जाओगी मेरे छोरे तक देखो गड़बड़ती है मेरे लड़के का लड़की का तुम बताइए भाई बताइए कहिए भाई तो बार ली बेटी बार ली का बोल दे दूसरी दौरे जागी उन्हें बेबी कर ली का बोल दे तीसरी दौरे जागी इसके जो है ना झाड़ा लवा दे या झाड़ा ला वाली चाहिएगी क्या जिसके चांद गड़वा ले जंतर मंत्र कभी भी बनवा दे यानी इतने गुरु होंगे एक दूसरे को ऐसे सलाह देने वाले गुरु कहलाते हैं क्या गाना गिरा। और फिर बाकी रहे हनुमान की पूजा बताने वाले भैरव की पूजा बताने वाले देवी की पूजा बताने वाले ये गुरु और फिर मंडी बनवाने वाले गुरु और फिर स्नागत कढ़वाने वाले गुरु और फिर फूल खुवाने वाले गुरु फिर गंगा पर बैठे लंबा पर्चा लेकर तो पिछली सीधी बताने वाले गुरु बिना गलती के। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों में कोई है नहीं रह झूमकरा अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा अरबों में पाओगा तो जो संत। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 में लिखा है कि बहु नाम जन्मानाम जानमान माम प्रपद्यते। ब्रह्म कहता है कि अर्जुन मेरे से ज्यादा बहुत ही ज्ञानी आत्मा बहुत जन्म जन्मांतर के थे लास्ट के जन्म में दिल्ली व्यक्ति आत्मा मेरी भक्ति करती है ब्रह्म तक की और पूजाओं को छोड़कर
और वासुदेव सर्वानिति महात्मा से दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव वासुदेव का अर्थ होता पूर्ण परमात्मा, ही सब कुछ है, ये सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष ही सब कुछ है, ऐसा बताने वाला संत को ये बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो दुर्लभ मुश्किल से दुर्लभ है, मुश्किल से मिलने वाला। आज परमात्मा ने वो मुश्किल आसान कर दी आपकी, आपको नहीं मालूम आप कितने पुण्यकर्मी हो, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। और गौरी बताता है उसको, और गौरी गदगद होता है कि लाल है, जिसके दर्शन के नाम से आनंद आवे और दर्शन हो जाता जो रहना की और गर्व हो जाता कहना है। तो ऐसे आप जो लाल हो और ये दास गौरी बन जाए, आपकी किस्मत को मैं जितना करा रहा हूँ इतनी थोड़ी थोड़ा कर रहा हूँ, सब पर मान लेना। प्रकार कराना कोई बालकों का खेल नहीं है, क्योंकि रजा मालिक की और मेरा ईश्वर की और आपके पुण्य कर्मों की मालगाड़ी आपके साथ है। कभी परमात्मा आपकी प्यारी आत्माओं के लिए कितनी कितना दयालु परमेश्वर, कितना दयालु है। अब देखो आप तीन दिन यहाँ आते हैं, अब ये काम तो आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, आप घर पर रहोगे तो भी बिगड़ जाए, घर बैठा रहे का नुकसान हो जाए, सारा कुनबा देखा सुबह सुबह पानी हो जाए। या आते हो या नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, किधर सिनेमा देखोगे, या किधर गप्पे आंकोगे, किधर पास चलने वालों के पास बैठ जाओगे, या बनवाने कोई सा रिश्तेदार आ जाए तो कहते हैं डाएंगे थोड़ा कुछ के गप्पे से आएगा, तो पैसे भी बर्बाद समय भी जाओ। तो इस प्रकार ये कर्ता मालिक की हुई आपके ऊपर के 10-20-50 रुपए किराए से लाकर भगवान के दरबार में आते हो, परमात्मा की चर्चा सुनते हो, और तीन दिन का जो समय आपका, बल्कि एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले आपके मन में प्रेरणा हो जाए परमात्मा कैसे छुट्टी मिले, कैसे काम की इधर उधर करो, कोई नौकरी वाला नौकरी से छुट्टी की चेष्टा करता है, कोई बहन भाई अपने काम को आगे पीछे करता है, कोई बहन 2 दिन पहले रोते राम लागे जी 2-3 दिन पहले अपने घर के राजी रहेंगे, नाम लेकर की ना करेंगे 2-3 दिन पहले लगेगी अपना दास दे इकट्ठा करेंगे। तो ये भी आपकी जो वो पहले की जो चाह मालिक थी, इसी के लिए आपने कसक जो बन जाती है, ये भी आपके शुभ कर्म है। इसी दिन से आपकी सेवा शुरू होगी, आपकी हाजिरी लगन लगी सच्चे दरबार में, कि मेरी प्यारी आत्मा जो कितनी कोशिश कर रही है, सारे घर क्या राजी वो लगाए रखते पहले तो कहन भाई तुझे कल कल के आना, ये नहीं ना चाहते तो तीसरा दिन देगा खास है। तो वो भी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जितनी हमारी अधीनी बनती है, वो परमात्मा के चरणों में शरण अक्षरों में लिखी जाती है। और ऐसे ही कर्म बनते हैं और कुसंगत में जाने से ऐसे विपरीत होते हैं, गिरते 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 सबकी बात बिगड़ जाती है। या परमात्मा जो तीन कृपा अपने ही कर दी है, आप हर महीने आज ऐसा करिए गए, हर महीने तो रिश्तेदारी में जा सकता, तो कितनी प्यारी है रिश्तेदारी में नहीं जा सकता, ना तो आ सकता वहां रह चला जाता है। और यहाँ आप जितने पाओ उतने करे, अब तक चाहते रहे तो काम छोड़ के आना पड़ता है, और जिससे नहीं आती जो परमात्मा वो बहुत महसूस करता है कि देखो यहाँ मैंने क्यों लूट लिया, ये परमात्मा तेरे दरबार में आता है, सतगुरु के दर्शन करता, परमात्मा की चर्चा सुनता, सारा दुनिया के भगवान का नाम देते हैं, चाहे दूसरे से ईश्वर करता सुने, ये अपनी किताब को देते रहने नहीं करे, तो नितनेम करे, इतना 3 दिन की स्थिति भी मिल जाती है। और ये 3 दिन वही आ सकता है जिसकी परमात्मा कबीर साहब आपकी सच्ची लगन देते हैं, आपके अंदर जिसे सड़क देते है परमात्मा, काल से आपकी जमानत लेता है, इस समय के लिए काल की कैद से छुड़वा के लाता है, तो स्थिति दिया है 4 दिन 3-4 दिन की, और तुम गारंटर दिल गया कि वापस कर दूंगा तेरे पास ला कर, अभी तुम्हें स्थिति दे दो 3 दिन की, क्योंकि ये परमात्मा है। तो मालूम है ये मेरी प्यारी आत्मा वहां जाती रही, तो ये भूल ना करे जिससे परमेश्वर की, और ये काल इससे बहता नहीं गए, तो इसलिए सत्संग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। वहां भी अपने विचार परमात्मा ने तो रखा कि भाई बहन मेरा बैठा ईश्वर करता करे, दूसरी नहीं करे, 2 मिनट बाद बतला गया फिर दिमाग चला गया अपने मालिक की चर्चा शुरू कर दे, फिर सदस्य आ गया महात्मा का भी रुचि बन गया,
ऐसे मोती अदम्ब से अट गया है। सब ने यही दिखा कि तेरे देखते तेरी देखती तेरा कार तेरी देखती राज मर्जा कर देते तेरी देना तो तुझे यही हिस्सा मिलता है। ये मेरा यही कहता और फिर वो फैज नहीं तब तक ठीक है भगवान इसका साथ भी देगा। आपके मान ले आपके बच्चे हैं, आपकी कार है, देखती है, फैक्ट्री है, कोई धंधा है, कोई पति है, तो उन उसकी रक्षा भी तो मान ले करेगा, हम कर भी सकते। तो ये सोच कर भी ये सोच कर भी हम इसके कई मन समर्थन करना चाहिए परमात्मा। जो रास्ता तुम भी रहो मेरा के सारा काले जाद खरीद रहे गुलाम तुम्हारा इस तरह रहना पड़ेगा। जब ये प्रसन्न होगा हमारे को और ये प्रसन्न हो जाए तो फिर तो सारा देश रेस जाए, तो सारा देश रेस हो जाए पर ये रेस नहीं होना चाहिए। और ये रेस हो जाए तो फिर कोई भी आपका साथी नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगी नहीं फिर नुकसान होंगे रिश्ते जाए भाई भी मुंह मोड़ जाएंगे नहीं मेरे पास से। तो ऐसे ये राजी हो जाए तो सब प्रसन्न है। दूसरे गए कईयों का गए तीसरा दिन जाता है तो गाँव में ज्यादातर ये बीमारी का अनजान समान मेरी आत्मा में ये ज्यादा जब तेरे तेरे में आने लगे हमारी बहन बेटी में भाई कहा करते कि हम कलियों की तैयारी करते हैं और कह लेने लाग जाए ये कहने ले उनकी ताजी दिनों की खा लेंगे जरा कल उन्हें कुछ बिना दिखता है कुछ बात हुई छह महीने साल में गया अपने सकते हैं हम भी तो नाम दे रखा है चलाने जगह जाते हैं हमसे छह महीने में कर जाए करते हैं। अब इन तीन सी बातों से हमने अपना उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए क्योंकि वो अनजान है। अब जैसे आत्मा हमारे तुम करते और दिन दरवाले में या पड़ोसी में या अपने निजी तरीके में ये ज्ञान नहीं तो ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो ये बाधक बनते हैं। ये कहते हैं भाई दान भी तो साधता ही से आकर क्योंकि नाश करेगा तीसरा दिन होगा पास कराऊंगा तब हम पास करते थे दो घर पर जाकर जो कराना होता है वो वही दो पैसे तुम पर ये लगाएगा जिसका पूरा पैसा भर जाएगा पूरा दृढ़ विश्वास होगा निश्चय होगा कि उसके बिना गुजारा कटी नहीं है। जैसे जमींदार बीज बीज है जमींदार बीज बीजता है और ये अनजान लोग जिनके धरती मार कर ज्ञान भी वो पैसे देते हैं जैसे एक जमींदार गेहूं बीज जाता गेहूं की बिजाई कर रहा था एक किसी बड़े शहर का रहने वाला कोई नौजवान बालक उसकी नौकरी लग गई और इसमें किसी कांग्रेस शहर में के गांव में जाना पड़ गया और जमींदार इस रस्ते के साथ साथ गेहूं बीज रहा था और इस शहर के बच्चे ने उस लड़के ने नौजवान बालक ने ये भी नहीं मालूम था कि ये ही पैदा कैसे होते हैं जितने अपने खेतों में अपनी शरीर में गाड़ियों में रखते हुए गेहूं देखते थे और उसमें भी कई बार खाना पीने करके इसमें दवाई दुई डाल कर सुरक्षित रखा करते फिर भी खराब हो जाते थे उसमें कितने कितने कृषि बेरा हो जाता था। इसने देखा कि ये आदमी अंधा है या पागल है कि गेहूं जब मिट्टी में गिर एक कमाल का आदमी है। अब उसने देखा कि ये कौन है बैल के बेट रखे हैं हल ये क्या कर रहा है खेल का और गेहूं को उठा रहा है और इसमें मिट्टी में डाल रहा है ये देखता रहा खड़ा होकर के किनारे पर खेत के किनारे पर। जब एक जमींदार ने ये पहले जो थैला डाल रखा था ये पूरा बीज दिया तो दूसरा भर के ले गए जो वहां पर बीज की बच्ची नारी रखी थी गेहूं की उसमें से भरकर चोर लग गया बीज में मिट्टी में डालने लगा गेहूं को तो तब उस शहर वाले बच्चे ने तो नौजवान बालक ने पूछा कि भाई ओ बैलों वाले कहा भाई क्या बात है आलू ने सोचा कि रस्ता टूटता होगा काफी देर का सुधार में कहा भाई बोल क्या बात है ये कहने लगा भाई क्या बात है तो ये गेहूं के मिट्टी में क्यों डाल रहा है अरे ये मिट्टी में खराब नहीं हो जाएंगे हमारे घर में हम तो इनको इसमें रखते हैं सभी इस लोहे के खेतों में और ये तो तब भी खराब हो जाते आप मिट्टी में डाल रहे हैं पावलों में देखा देश में खाद्य पदार्थों की पहले कमी है आपको बर्बाद कर रहे हैं। अब वो जो आपने में खाना बना हुआ था वो तो जमींदार में गड़ी बूट से गिरा और जमींदार वहां से उसी इसकी जो रखता है जो ये कण से देखता है बंदर इसे ये नहीं मालूम गेहूं ये खराब होकर ठीक कर गए
कभी तुम्हें कहाँ से भाई कहाँ से आते कौन है कौन से देश का है?
हिंदुस्तान का हूँ भाई।
हिंदुस्तान के आदमी ये नहीं मालूम ये नहीं कैसे बीजे जाते हैं, मतलब क्या कर रहा है? मैं गेहूँ बीज रहा हूँ और गेहूँ बीज रहा हूँ अब मिट्टी में डाल रहा हूँ, अब तो ये बर्बाद होते जीते लेकिन ये नहीं मुझे आबाद करेंगे। ये कैसे आबाद करेंगे? आपको उस शहर के व्यक्ति ने देखा कि आदमी एक मन लाया है, एक मन 40 किलो एक एकड़ में डालूंगा और तरक्त करके ले जाऊंगा, मन मैंने 70 मन होंगे 70 मन होंगे वो क्या लगा दी साहब कोई बात भी करेगा तो मिट्टी में खराब हो जाए तो गल जाएंगे 2 दिन में। अब ये गलकर भी उधरते हैं उसने कहा कि फिर आइए 4-5 महीने पीछे फिर बात करूंगा तेरे से। तो क्या होगा कि देखते तो इसमें कितने गेहूं बने पाओगे? अच्छा तो फिर बात वगैरह के जब दिनदार मुझे काट रहा था 4-5 का 25 डालियों का दिखा के देख एक दाना दिख जाता है उसका ये 4-5 डाली बनेगी काम से गुप्ता का गंगा बचेगा और इस वक्त डाली लगी है तो डाली में देख के 50-50 डाले ये इतने बर्बाद होते नजर आ रहे थे एक अंदर के लेकिन ये आजाद कर दिए मिट्टी ने इतने से बर्बाद होता दिखता था धन लेकिन ये आजाद कर दिया किसान को। ऐसे आज जो हम दान कर रहे हैं आज हमें कभी बर्बाद होता दिखता है आम व्यक्ति ने तुम्हें दिखते का इसको दिया काम करके गए हैं यहाँ पर डाला और ये फिर ये सर ऐसे दिखते देंगे ये इतने चंद परमात्मा बने पाएंगे परमात्मा के दरबार। तो इस प्रकार हमने आम व्यक्ति के नादान अनुदान में चेतन ज्ञान खाली के मन में शहर से कितना खाना दिख जाता है शहर का भी क्या होता है जरा विद्य सदा आज के दिन भी नजर आया था तो जमींदार ने मैंने किया जी देखने में तो अपना अपने दुनिया के चंद अपने एक्सपीरियंस है इसको अनुभव है इसका इस नादान की व्याख्या को नहीं मान सकता। इसी प्रकार की प्यारी आत्मा को ये ज्ञान हो गया
कि आज हम जो तुम कर रहे हैं जो हम भक्ति कर रहे हैं ये हमें आजाद करेगी जैसे तुम्हारा समय बर्बाद जाता दिखता दुनिया की दृष्टि में और जो हमारा पैसा बर्बाद होता दिखता नादान में ज्ञान की सोच है तो ये आजाद करेगा आपको। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दस्त नहीं तो दस्त तुम लोग शरायत में तैर है आत्म के शरायत में तैर है शरायत मन गर्म करने के खैर मन तरह का संत है और तुझे आत्म कोच अब जैसे कितने तुम आत्माओं का उद्धार हो रहा है किसी के 1000 रुपये किसी के 2000 किसी के 10 किसी के 5 किसी के 20 हजार और यहाँ देखो गंगराज बंदारा चला गया ज्ञान के निमित्त और यहाँ पर किल्लत के पंखे चले लगे किसी की एक कैद बने के चंद्रा बने जिसका फर्श बने तो सबका एक रेशे में आपके हर तरह का लाभ मिलता जा रहा है। अब इकट्ठा एक नहीं कर सकता तो सबके 10-10 रुपये मिलकर उसके अनेक भंडारा बन जाता है उसमें तो बचता है तो वो ज्ञान के निमित्त और अपनी प्यारी आत्माओं के लिए कहीं फर्क आते हैं कहीं पर कहीं बाथरूम बन जाते हैं तो ये दिन हो रहा। अब इस बात ने देखा कि जितने भी आज वर्तमान के संत हैं सरपंच के नाम गलत उनके और फिर उनकी ये व्यवस्था नहीं मिलते होगी ना कोई पुण्य करवाते हैं तो धर्म का काम होता धर्म करते हुए दम करवा दिए यज्ञ हवन नहीं करना जोत नहीं लगाना हवन नहीं करना ये जोत जो जबरी हवन से रहा परमात्मा के निगत हवन को हवन चाहे लकड़ी का घी डालकर प्रज्वलित कर लो मंत्र बोल ले और चाहे लोगड़ बना कर क्योंकि इसमें
100-125 जोते जल रही है और इनमें 3 दिन में एक जोत में लगभग किलो घी लग जाता है। अब आप देखो अब एक में 1.5 किलो घी 3 दिन में और 150 में 150 किलो हो गया 450 किलो हो गया और इस घी को लकड़ियों बगैर के जला के देखो
जो धुमा गणा नहीं हो और इसमें बेरा भी कोई नहीं कहां जले, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है और घी प्रज्वलित होने से हवन होगा उसमें वातावरण शुद्ध होगा, ये इसका कुछ और भी बेनिफिट होता है सूक्ष्म रूप में जो ऊपर के लोगों तक पहुंचता है, इन देवताओं तक पहुंचता है। तो ये उसके प्रति में जैसे जड़ की पूजा कर रहे हैं हम तो देवत उन टहनियों को पहुंची वो खुराक तो टहनियों ने फिर फल दिया अपन को, ऐसे ही गीता जी में लिखा है। तो यह पांच यज्ञ होती है लगातार, तीन दिन में पांच यज्ञ संपन्न हो जाती है, चार दिन या पांच दिन जब यह सत्संग चलता है जहां पर, और वैसे भी यहां पर पांच एक दिन रात भी चलती रहती है, किसी टाइम आए वो आपको भंडारा भगवान का त्यार मिलेगा, ना होगा तो बना दिया जाएगा। और यहाँ पर दिन रात अखंड जोत जलती है, दस ग्यारह जोत रोज जलती रहती है। जो बहन भाई क्या होता है कि हम पहले पहल तो आपको कहते हैं जैसे कोई दुखी प्राणी आता है तो हम कहेंगे भाई सत साहिब, जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो इन सब विचारों का हमें बार बार रिवीजन होता है, हमें भूल नहीं पड़ती अपने प्रभु की। अब जैसा कि आपको बता रहे थे कि वो संत जो बेचारे ना तो कोई भक्ति मार्ग उनके पास ना कोई शास्त्र आधार, इन प्यारी आत्माओं को जो जोत हवन आदि करते थे लगाते थे हमारे पूर्वज वो भी बंद करवा दी, वैसे तो वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे थे, नाम मात्र सी थी एक जोत इतनी बनाया करते, उसने आली सुक्की सी रख देते थे, लेकिन वो तो फिर भक्तिहीनता होने से परमात्मा का हाथ उठ जाने से तो हमारे हम हवन भी नहीं कर सकते ना कोई धर्म कर सकते। आज परमात्मा की ऐसी कृपा हो रही है जिनको आज पांच चार वर्ष हो गए सतगुरु के चरणों में आया ने, जो पहले यानी ये वनस्पति घी भी नसीब नहीं हुआ था, आज उन घरों में परमात्मा देसी घी ने खत्म नहीं होने देता। और यहां आपके सामने अगर कोई यहां देख रहा कहे परमात्मा, उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं को इतना प्रफुल्लित कर दिया, हमने दूध की नदी सुना करते, यहां पर घी की नदी बह रखी है कबीर परमात्मा ने, देसी घी का हलवा, और कितनी पुण्यात्मा आती है और कितने पीपों का बनता है ये सतगुरु जाने, और देसी घी का छौकी यहां पे रोटियों की जो छौ सब कुछ उस परमात्मा ने देसी घी का, फिर अवन और जो है तो लग रही, और फिर भी घी जो है बचा रहता है सारे महीने, परमात्मा की प्यारी आत्मा आती रहती है उनके लिए सब व्यवस्था करता है, क्योंकि ये समर्थ है जब परमात्मा का सहारा हो जाता है तो हमें सब सुविधाएं प्राप्त होती है, हम अपने कोशिश से अपने भाग से उतना ही पा सकते हैं जितना हमारा नसीब यानी प्रारब्ध है, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाता है तो फिर वो अपने कोटे में तो अपने खजाने में तो कोष में तो हमें देना प्रारंभ कर देता है, फिर हमें साथ में ये लालच दे देता है कि ऐसे कर बेटा ऐसे कर बेटा तेरे ठाठ हो जाए, और उसके प्रतिफल में फिर हमें वो आप पे धर्म धर्म करवावे, आप ही फिर उसका प्रतिफल देता है। तो उन संतों ने जोत बंद करा दी, धर्म बंद करा दिए, कहते कोई भंडारे नहीं करने, वो तो इसे दुश्मन हो गया हमारे अपने इन जीवों के प्रथम तो उनको मनुष्य जन्म नहीं मिला, क्योंकि वो नाम गलत, उनकी साधना सारी बेकार, कति एक अन्य की नहीं, दास ने इन दुख आवे दुख आ रहा है इस मैंने कोई शौक नहीं किसी को बुरा बताने का या गलत बताने का, मुझे न्यो दुख आ रहा है परमात्मा, हम तन देते मैं भी अंधा था आपकी तरह, कदे हनुमान पूजू था, कदे श्याम जी पूजा करता, कदे किसी की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पूजा भी ना थी, वह पूजा होती तो चलो कुछ ना कुछ उनते भी राहत मिलती, भगवान विष्णु ते भी शिव की वह भी पूजा ठीक नहीं थी, अरे राम अरे कृष्ण दे रखा जाप मरे थे, तो अब हमने वो भी पूजा, ये दास आपको बताता है यहां तक के जो कमलों का जाप दिया ये अनमोल मंत्र है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है, इतनी कमाई आपकी होगी। अब चक्कर क्या पड़ रहा, कई भक्त तो ये कहते हैं जी मन ने तो छह महीने हो गए नाम लिए ना, बस ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगाओगे कि तुम्हारे यहां समझ में नहीं आती, तुम्हारा ध्यान हट क्यों कर रहा है, मैं ये इस बात तुम्हारा अतरज करता हूं। जैसे ही हमने अपने सतलोक जाना है, हमने ध्यान वहां रखना है कि कहीं है परमात्मा, यहां कोई गफलत ना हो जाए, ऐसी गलती ना बन जाए अपने तय कि वो सतलोक ना जा पाऊं, जैसे किसी बच्चे ने अब जिसके साथ बीता वही जाना है, अब जैसे बच्चा परीक्षा देता है और उसको परीक्षा भूल नहीं पड़ती, उसको अपना योग्य दिन भूल नहीं पड़ता कि तू कहीं फेल हो जा कहीं ये परमात्मा सारा साल खराब हो जा, तो फिर उसका ध्यान क्यों ना लगेगा? क्या हम लगाना ध्यान? पढ़ाई में लगाना और ध्यान को इन थोड़ा आंख मीच कर बैठे रहना है। ऐसे ही हमने जो मेडिटेशन हमारा ध्यान है वो ये नहीं लगाना कि अंदर बैठ कर के बोला अभी कुछ दिखा अंदर क्या देखेंगे अंदर, ये नहीं समझ में बोला आत्मा का साक्षात्कार करना है या ये समझ में ना यदि मेरे आत्मा का साक्षात्कार क्या करेंगे बताओ भाई। अब आत्मा क्या चीज है? हम आत्मा ही तो है और हम अपने को आप के देखेंगे बता, देखा है तो दूसर हो ही। अब हम किसी को देखेंगे तो आत्मा नहीं हो सकती, कोई और चीज देख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यह और वह कह दिया हमारे थे कहते आत्मा का साक्षात्कार हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए, अंदर ध्यान लगाएंगे परमात्मा ने वह निराकार बताएं। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा करे के बता भाई, यस ये और उल्टी छुई। तो ऐसे हम अनजान पने में उन अनजान थ्योरी के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनकी व्याख्या के आधार पर हम फिर भी वहीं अटके रहते हैं। तो क्या कहते हैं परमात्मा के झूठा ज्ञान ध्यान का अलावे, तारा ज्ञान ही झूठा फिर ध्यान कित लाओगे? और बाद विदा चतुराई, ये तो बाद विवाद करते फिरते चतुराई है तुम्हारी और सत भक्ति तुम्हें मिली नहीं। तो हमारा जो हरदम ध्यान ये रहेगा, ये ध्यान आपका लग रहा है कि आप भक्ति से दूर नहीं हो रहे, आप मंत्र जाप करते रहो जो नाम दिया है, केवल नाम की कमाई से और इन शुभ कर्मों की जो आप कर रहे हो पुण्य धर्म, ये पांच यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, ध्यान ये नॉट मेडिटेशन, ये हम मेडिटेशन किसे कहते हैं? आंख मीच को बंद कर लेना फिर देखना भीतर, ओहो क्या देखा, ये तो ऐसा हम बाहर देख रहे हैं ऊपर ब्रह्मांड का चित्र इसके अंदर, उसमें और अच्छे नजारे हैं लेकिन नाम नहीं जपा तो व्यर्थ जीवन है। वह कमाई रह जाएगी आपकी, कमाई करनी है, मन को रोकना है, मन को डर लगेगा हमें कि जैसे बच्चा को डर लगता कहीं फेल ना हो जाऊं तो वो पढ़ता रहता है और पढ़ता रहेगा, कभी मन लगे कभी ना लगे परंतु लगेगा आखिर में। थोड़े से दिन में आप इतने सियाने हो जाओगे आपका जी नहीं लगे मंत्र ना कर लेगा, इतना आरती नहीं हो लेगी, आपने रोटी अच्छी नहीं लगेगी, इतने सुबह के नित्यनियम नहीं कर लोगे या जैसी भी क्रियाएं हैं, तो आपको तो वो आपका ध्यान लग रहा है, आप कमाई कर रहे हो और आपकी संग्रह हो रहा है। परमात्मा ने सब पता है यहाँ पे, उस परमेश्वर को ज्ञान है कि ये प्यारी आत्मा भक्ति क्यों करें, ये तो कृपा मालिक हमारे ग्रेस मार्ग देगा अपने को जब यहां से निकलेंगे, पर देगा उसको जो कति चरणों में पड़े रहेंगे आखिरी सांस तक समर्पण रहेगा जिसका जीवन। परमात्मा को मालूम है कि यहाँ ये ऐसा गंदा शरीर दे दिया इस काल ने कि इसमें कदे शर्मा दर्द, कदे बीपी डाउन, कदे आई, कदे जाड़ पड़वानी, कदे लड़की का छोरा ना हो रहा है, भगवान बटे दारू पीन लागे, 36 इंजेक्शन और ला रखे हमारे रोज 25 मच्छर लड़े दिन में कह। तो परमात्मा कहता है कि उसने बेरा सारा मेरे भगवान ने कि ये बेचारे क्यों कर भगवान भक्ति बजाय तो राक्षस के साथ काम कर रखा है इस काल ने इनकी गिला, पर वो दयालु है हमें ग्रेस मार्ग देता है, बेटा तो सच्ची भक्ति लगन लगाए रहे मेरे में और तेरा दिशा भजन हो करण की चेष्टा करे, अपने ओढ़ते अपनी तरफ से गफलत ना कर दिए। अब जैसे कोई ज्यादा ही दिक्कत आएगी, मानसिक परेशानी तो बढ़ जाती है, कुछ देर तो भक्ति तो दूर हो जाता है, मंत्र भी याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी रो रुआ के हम फिर भी मंत्र करना शुरू कर देते हैं, मालिक तो जाने अपनी सोचते हार के और बैठ कर फिर उसी के चरणों में रोने लग जाते हैं, उसका मंत्र करने लग जाते रोते रोते, तो वो इस चीज से प्रसन्न होता है। और ऐसे ही ये उसको मालूम है कि ये कालीन भक्ति करण नहीं देगा, ये तो यू दया बख्शेगा फिर आपको मनमान इसी शांति दे देगा, चाहे कितना हानि होगी हो और फिर भी इसी शांति देगा, जानो आपके चिंता करना चाहोगे तो भी ना होए, क्योंकि आपको ये भी ज्ञान होगा कि परमात्मा आपके शरणों में, अगर ये हानि हुई है जो आपके शरण में ना होता तो आज मेरा सत्यानाश था, ये सत्कर मान लेना, अगर आपका हाथ भी कट गया तो जान जानी थी, आपकी टांग भी टूट गई तो सोच लिया आपने खत्म होना था, इस सतगुरु के चरणों में नहीं होते थे, इतना आपको पक्का दृढ़ विश्वास हो चुका होगा उस टाइम जब सच्चे दिल से इसके चरणों में आप लग जाओगे। तो कहने का भाव मेरा यह है कि इन नादान आत्माओं ने ऐसा जुल्म कर दिया कि पहले तो ये नाम गलत, फिर ये धार्मिक सारी क्रियाएं गलत, बिल्कुल एक भी अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं, शास्त्र के अनुकूल एक भी नहीं, और फिर वो अधिकारी नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, और ये दास ये बात कहे तो नई आत्मा जो आवे सत्संग में न्यों कहता रे गुरु जी तो उनकी बुराई करते हैं दूसरे संतों की। बताओ मैंने के शौक था बुराई करने का, रो रहा हूं रोता हुआ कहना पड़ता है मुझे कुछ लेना नहीं किसी से, और कोई मैंने यहाँ पर चंदा नहीं भाई पर्ची काटनी ना किसी की, कोई इस करके मैं किसी को बका बकू का अपने पीछे लगाना चाहता हूं नहीं। आपको ज्ञान नहीं मुझे पता मेरा मोती अबिंद हट गया कि इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है, अगर ये बर्बाद हो गया तो उस जैसा दुश्मन नहीं जो इसको बर्बाद करवा रहा है। और संत हो गए ये तो भोली आत्मा आपको साधु मानकर संतों के पीछे लिए, और वो संत तो जब भी पता लगे ना शास्त्री अनुकूल साधना दे रहे हो तो या तो उन पुण्यात्माओं का फिर जन्म नहीं होगा जो उनके अनुयायी है, और किसी की अफड़ी कोई कमाई पिछले जन्म की रह रही और मनुष्य जन्म हो भी गया अगर आगे का तो ऐसे स्थान पर होगा जहां कग चुगते अंडा करे। ये देखे होंगे बेचारे झोपड़ी भी नहीं डाल सकते इस पॉलिथीन पेपर का, इस पॉलिथीन पेपर का मम्मी कागज की झोपड़ी बनाकर सह परिवार लेटे रहते हैं गर्मी और सर्दी वर्षा में, तो ऐसी स्थिति ला के ये छोड़ देंगे या तो मनुष्य जन्म नहीं हो गया था फिर ये टेम पर टूक नहीं नान दौन पशु से भी बदतर जीवन प्राणियों का कर देंगे, और फिर वो भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो कमाई भक्ति वाली तो खत्म होगी क्योंकि नाम गलत जपते रहे सारी उम्र, फिर वो 84 लाख जोनियों में चले जाएंगे। और काल यही चाहता है कि इसको ये भक्ति करे तो या तो करे नहीं करे तो गलत करे, और ताकि ये 84 में एक बार गिर गया 84 लाख योनियों में फिर तो इंत तो निश्चित हुआ ग्रहण कितने वर्षों के बाद इनको मनुष्य जीवन मिलेगा। और कबीर परमात्मा की चेष्टा है कि ये जैसे दूसरे संतों के पास बात भक्त आत्मा लग रही है और उनको सुख हो रहा केवल कभी किसी को हो गया वो क्या लाखों में तो 5-4 के उदाहरण दे देते हुए क्या कहते हैं उसको देखो इतना लाभ हुआ उसको नाम लेने के बाद उसका पत्रा इतना लाभ हुआ, और ये उनका कोई प्रारब्ध होता है नाम लेने का सूत बैठ गया और उनका वो लड़का हो गया गुरुजी तो लड़का हो गया उनको उनका ऐसा, क्योंकि उनकी अपनी थ्योरी ये है कि कर्म घट बद नहीं सकते, परमात्मा जो है कर्मों में फेर बदल नहीं कर सकता केवल प्रारब्ध मिलता है, ये उनकी थ्योरी भूल जाते हैं वो बोली आत्मा कि ये कहते हैं कि भगवान जो है कर्म को नहीं काट सकता कर्म को घटा बदा नहीं सकता तो लड़का कितने दे देगा थरी को फैक्ट्री कैसे चला देगा वो गुरुजी का भगवान, ये सोचनी पड़ेगी हमने। तो हमारे कबीर परमात्मा ये कर्म न काट के और हमारे पाप कर्मों का विनाश करके शुभ कर्मों को बाहर देते हैं, जैसे खेत में फसल के अंदर खरपतवार हो जाता जो फसल को दबा लेता है तो आज एक ऐसी मेडिसिन चल पड़ी है दवाई कि उसको डाल दे तो वो घास न फूंक दे पर फसल खराब नहीं होती बल्कि प्रफुल्लित होती है, तो ये परमात्मा कबीर साहब वो दवाई देते हैं उनके पास वो दवाई भी नहीं रू उन्होंने देखो फलाने का घास फूंक दिया वो तो वही कितना सूत बैठ रहा रे ही रही होगी उसके, तो ऐसे हम अनजान पड़े में उनके फंस गए। अब देखो समाज भगत समाज को ज्ञान कैसे हो संतों से हो, और संत ज्ञान वह देते हैं जो बच्चों की टॉफी होया करे मीठी गोली कॉमिक्स होया करती है ना कॉमिक्स ऐसे पढ़ा रहे एक भी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं। अब जब हम सत्संग माना प्रारंभ करते हैं तो हमें पहले बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है दूसरी बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है, ये ऐसा मार्ग है कि आप 100 बार सत्संग सुनोगे जब जाकर के आपका हर पहलू से दिमाग सेट हो जाएगा, और अब पहली 2 बार सुनते हैं तो पुण्यात्मा होती है जो तुरंत ही मान लग जाती इस मार्ग पर तो वैसे तो उनके शुभ संस्कार लगा दिया उनको, लेकिन फिर भी मन में वो पुराने ज्ञान का खचड़ा भरा ही रहता है शंकाएं पड़ी ही रहेंगी, ले उसका ये समाधान है सत्संग सुनते रहो पुस्तक पढ़ते रहो अपने आप समाधान हो जाएगा। क्यों होगा कि वो खारा पानी पर रखा था, अब खारा पानी जब निकलेगा जब जैसे एक ड्राम भरा हो खारे पानी का 200 लीटर का और उसमें 2 गिलास मीठा पानी डाल भी दिया था बढ़िया वाला यानी अच्छा पानी तो वो के असर करेगा, अब उसमें डाल ले जावे यानी ठोके जाको मटके तो वो फिर खारा बाहर हो करके फिर वो कोई काफी समय के बाद वो फिर मीठा पानी रह जाएगा। तो ऐसे हमारे अंदर पहले ही रॉन्ग जो नॉलेज है वो बिल्कुल शास्त्र के बेसलेस शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान जो दे रखा था वो भरा पड़ा है, और उसके आधार पर जो उस्ताद सत्संग करता है ये पहली बार सुन रहे हैं तो ये समझो 200 लीटर में 1 लीटर मीठा पानी गया आपके तो वो अंदर ही गड़बड़ रहेगी, और इसने ज्यादा सुन लोगे फिर देखना वो खारा निकल जाएगा और मीठा मीठा रह जाएगा। फिर तो जो शब्द दास कहेगा आपके हृदय में समाओगे, शंका की कोई जरूर आवश्यकता नहीं रहेगी। शंका इसीलिए है क्योंकि हम पहले ज्ञान दूसरा सुन चुके हैं आवश्यकता से अधिक, इसलिए हमारी शंकाएं हमारे सिर में दर्द रखे, लेकिन फिर भी लगा रहे कोई बात नहीं। वो भी मानस, वो भी एक पुण्य आत्मा होती है। जैसे एक जमींदार की और एक सेठ से दोस्ती होगी, दोस्ती क्या होगी कि वो अपनी कनक वगैरह उस आड़ती के पास डालता रहा रहता था, और वो बनिया जो सेठ था वो भी बहुत ईमानदार और नेक आत्मा थी, उनका आपस में कुछ अच्छा प्यार बन गया, और वो जाकर के डाल आता था, साल में हिसाब कराता था, बल्कि 10-20 रुपए और वो सेठ उस जमींदार को एक्स्ट्रा देता था, भाई के वेरा बोल चुक लाग जा मैं पाप का भागी नहीं बनो। उनसे उन आपस में इतना प्यार बढ़ गया था बहुत गना। एक बार क्या हुआ कि सेठ को घाटा हो गया, दिवालिया निकल गया, उसकी दुकान भी बिक गई, उसका मकान भी बिक गया किराए पर। वह अब वो जमींदार गया, जाते उसने तो अपनी वो बैलगाड़ी, उसने जाते ही अपनी वो बैलगाड़ी में जो कणक ले गया था वह जाते खाली कर दी उसकी दुकान के सामने। अब दुकान में तो सेठ दूसरा निकला, दूसरा निकला तो उसने पूछा, भाई वो मारा वो सेठ कहाँ गया? तो वो कहने लगे, जी वो तो दिवालिया हो गया, उसकी दुकान भी मन मोल ले रखी है। अच्छा भाई, अरे कैसे कैसे बनी? अब भाई उसका बहुत पैसा सिर हो गया, उसमें व्यापार में घाटा बन गया। तो उसके तो भाई मकान भी बिक गया, दुकान भी बिक गई। तो भाई कहाँ मिलेगा वो मुझे? जमींदार ने पूछा, कहाँ मिलेगा वो? भाई वो तो किराए पर मकान ले रखे, वहां रहता है। अच्छा, वहां पहुंचा, देखते सेठ के आंखों में पानी आ गया। जमींदार ने कहा, भाई माड़ा मन क्यों करे है, एक रो पैसा नहीं रहा, और कोई ऐसा ब्योंत नहीं, इतना पैसा नहीं कि नया व्यापार कर लूं, ना कोई रिश्तेदार साथ देता है, ना कोई भाई साथ देता है, क्या करूं मैं, तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। तो वो जमींदार कहने लगा, भाई काफी देर बात होती रही भी, कहीं भी मुझे ऐसा रास्ता नहीं निकल रहा जिससे मैं दो रोटी का साधन बना सकूं। जमींदार कहने लगा, भाई देख मैं व्यापार तो जानता ना, पर जमींदारा जरूर जानता हूं, अगर जो मेरा व्यवसाय है इसको करना चाहे तो मैं आपकी मदद भी कर दूंगा। और भाई 10-20, 10-5 किले तेरे लिए ठेके पर लेके भी दे दूंगा, उसने उधार भी रोक दूंगा तुम्हें, साल भर में उसके तेरी फसल हो जाए जब उसको पैसे दे दिए, ऐसा मैं जमींदार अपने किसी जमींदार से तेरे को जमीन दिला दूंगा। भाई देख थोड़ी बहुत मदद भी कराऊंगा तेरी, तुझे समय समय पर गाइड भी करूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और तेरी रखवाली भी करा करूंगा, भाई इतनी तो मैं कर सकता हूँ। बीज ना होगा तो बीज भी दे दूंगा तेरे ते, भाई खेती तो करे तो मैं सहयोग दे सकता हूँ, और मेरे बस का तो और व्यापार बिजनेस तो नहीं जानता। अब उस सेठ ने सोची, भैया अभी बात ठीक से कि जमींदार जानकार है, तेरा दोस्त है, और तेरे हित की कहेगा, यो अहित की नहीं कह सकता। तो वो कहने लगा, भाई मेरे घर पैसे भी नहीं इतने, क्यों? बोला, पैसे तू बाद में दे दिए जब तेरा सारा काम एक वर्ष के बाद हिसाब कर दिए। तो जमींदार तो सेठ बोला, भाई ठीक सा था, बढ़िया अच्छी बात, तेने तो मेरा जीवन दान दे दिया, मैं तो जमा कभी बहुत बुरा हाल हो रहा था, मैं तेने सोचू था परमात्मा 1,000-2,000 रुपए हैं, ये 2-6 महीना का दाने आओगे, इस तरह बता क्यों कर काम चले। सेठ को ले गया अपने साथ वो जमींदार, और ये उनके लिए उदाहरण दे रहा हूं, जो कहते मेरे मन में शंका रहती है, मेरे मन में ऐसे हो जाता है, कभी ज्ञान अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, और फिर लग रहे हैं भक्ति में धन्य है वो फिर भी। तो वो जमींदार ने कहा, भी ठीक है 10 किले मोल दिवा दिया उस ठेके पे, ठीक का यानी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, साल भर की जैसे को 200 रुपये किला को 300 रुपये किला जैसा भी समय था, जैसे आजकल 4-5 हजार रुपये किला हो जाए। तो उसने कहा, भाई जमींदार ने कहा कि सेठ जी अपना ही हिसाब रखना, और देख मैं उधारे दे दूंगा आपको, और मदद होगी कुछ वैसे भी मदद कर दूंगा तेरी, तेरा हर अड़ते कभी
अपने मैं भी मदद करवा दूंगा, अड़के साथ वो फ्री कर दूंगा अपने बैलों से कुछ, क्योंकि काफी किले हैं तो और भी कोई हाली या ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, यानी उसके उससे उसकी गुड़ाई करवानी पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि 10 किले 15 किले लेकर के सेठ को दे दिए ठेके पर, और कहा कि अब सेठ जी इसको ट्रैक्टर से या हल से इनकी बहाई करवा दे, गुड़ाई करवा दे। अब गुड़ाई करवा दी तो जमींदार ने उन हाली जो गुड़ाई की थी जिसने ट्रैक्टर से या हल से, उसने कहा कि सेठ जी मेरे 100 रुपये हो गए। जमींदार बोला भाई मिल जाएंगे कोई बात नहीं, पैसे फिर मिल जाएंगे, साल भर में दे देंगे, अच्छा कोई बात नहीं। अब लाला जी ने लिख लिए 100 रुपये भाई के। फिर सेठ बोला तो कहा भाई इसमें बीज डालने हैं, बीज डाल दिया क्योंकि उस जमींदार ने अपने घर बीज दे दिया। अब 10 किला में 15-20 मन गेहूं भी डाल दिए, 10-15 मन 15 किला में, वो भी सेठ ने लिख लिया उधार देनी तो है। फिर कहा भी इसमें पानी दिला दे, पानी दिला दिया, कोर पानी गिर दिया। बोला भी इसमें खाद दे, खाद के भी लिख लिया भाई कट्टे फिर दे दिए, कोई बात ना उधार चले दुकान पर। सेठ ने रुए भी लिख लिया भाई 10 कट्टे खाद के, 20 कट्टे 15 कट्टे खाद के लगे हैं, इतने पैसे हो गए। अब पहले क्या किया कि पहले जैसे एक बार बहाई, फिर बारिश होगी, फिर का फिर बाजी, इसमें फिर बाजी, फिर एक बार फिर बाजी, इसमें घास्ता हो गया, अर्थात 5-6 बार तो पहले उसकी गुड़ाई करवाई। और सेठ जी लिखता रहा 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये हर बार के। फिर वो बताया कि उसमें बीज बीज दे, बीज बीज दिया, खाद गिर दे, खाद गिर गिरवा दिया उधार से, और इसमें पानी दे दे, पानी दे दिया। अब सेठ ने सोचा ये था लग रही है अच्छा, ये तो बिजनेस क्यों ना वही तो बात बिगड़ती दिखा। तो क्या हुआ 15-20 दिन के बाद खेत में बीज ब्याज बीजे पाते, 15 महीने बीते खेत में फिर आया शहर पे, खेतों में गया सेठ जी ने देखा तो वो गेहूं हो रहे बड़े बड़े, एक एक गला के यानी 9-9 फुट के, 9-9 इंच के। अब सेठ ने सोचा ये तो घास फेर उगी गया भाई, जमींदार फेरने गएगा इसने फेर बाजे, वो देख कर उस घास ने उल्टा हो लिया, वो गेहूं को घास समझ रहा था क्योंकि पहले वो घास घोस उग गया था। जमींदार कहता है एक बार फेर बवा दे भाई, इसको फिर बहाई कर दे, गुड़ाई कर दे। अब सेठ ने सोचा या तो फिर घास कुकरों हो जाए तो इतना घास तो उग जा रहा है। अब जमींदार देख रहा था सेठ आ गया, वो भी अपने खेत में नियर बाई काम कर रहा था, तो उसने ना सोचा था तेरे पास जरूर आऊंगा, तेरा दोस्त अपनी फसल देख रहा है। थोड़ी देर में देखा वो तो जा दिया 10 किले उठाई, वापस ही शहर की तरफ जा रहा है। उसने ये सोचा जय सेठ जमींदार धोरे गया जाते नो गए ने फिर बाजे, इनकी फिर बुआई करा दे, ये तो बात बिगड़ गई, साल उल्टा देखी जाएगी, 2-4 हजार रुपये गए, ये भी गए। तो जमींदार ने देखा सेठ तो उल्टा ही हो गया, के चक्कर पड़ गया, तो वो धीरे धीरे जाकर आवाज लगाई, सेठ जी आ जा भाई लाला जी क्यों जा, आ जा क्यों क्यों नो बोला के आ जाओ बस, मेरे तो उल्टे जन लग रहे हैं दोस्त, तेरा भी दोस्त नहीं, मेरे कर्म इतने मारे हैं, देख कितना घास उग गया। अब वो कहने लगा तेरे तो भाग जाग गए, अगना मेरे तो फूट गए। वो कह तेरे तो भाग जाग गए सेठ जी, तेरे जितनी फसल पे देख किसी का भी कोई नहीं, ये गेहूं है ये घास नहीं है। नो बोला रहा मेरा तो हार्ट अटैक हो गया, होता मन बन सोची थी फिर कहेगा इसने बाद दे भाई तो नहीं मेरे पास है नहीं, आउटपुट कोई नहीं, खर्चा ही खर्चा हो रहा। फिर जब लगी ना उसका बाल इसी मोटी मोटी और बड़ी गड्डी और ट्रैली की ट्रैली, सेठ जी ने बोला रहा धन है तेरे मात पिता ने, एक सीने से ला लिया अपने दोस्त जमींदार को, मैं तो भाई घना कम आदमी था, गनिया उल्टी सुलटी तेरे मन में तेरे बारे में आती रही, देख के हर नाश कराया इसने, बड़ी खई आड़ कसर काट दी, कोई भी तो आउटपुट नहीं हो रही, सारे काम बिगाड़ दिया। लेकिन एक थोड़ा सा मन नूंद चाह रहा कि यू आप भी तो कर रहा है देखी जाएगी। तो ऐसे जो भक्त आत्मा आज संत सतगुरु शरण में आगे उपदेश ले लिया और फिर भी उनके वो रेल शटरिंग हुआ करन के आगे नरक दे पाछे, ये दिमाग कुछ दिन रहेगा
पर लगे रहेंगे ना नू देख के चल यू भी लग रहा है यू भी लग रहा है, फिर एक साल काट दियो बस जाना तो बना, फिर दिखा दूंगा आप मैं जरा सी भी हलचल दिमाग में हो जा तो फिर तो धर्म आ जाओ तुम्हारे पास। क्यों अभी तक आत्मा अपना एक पिछला जो वो खारा पानी इतना ठोक रखा धीरे धीरे निकलेगा, तो फिर लगे रहना है सतगुरु के चरणों में, आप देख लेना वहां 10 साल खोजिए तो यहाँ 1 साल देख लो और फिर पैकिट कर जाइए तो ना समझ में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हो रही है अपने ऊपर। अभी तक हमने परमात्मा को समझा नहीं, जाना नहीं, समझा जाना जब जाता जब हमारे पास कोई प्रमाण हो कोई प्रूफ हो, लेकिन हम अपनी चाह की अपनी कसक के आधार पर ना जाने किस किस के साथ के तीर्थों पर जाते रहे, जिसने जैसी भी क्रियाएं बताई उनको विदित कर करते थे, और अब ये ज्ञान हमारे सामने प्रमाणित हो गया, इसमें हलचल हो ही नहीं सकती। फिर तो मन में ये आएगी अगर यहाँ भी बात ठीक नहीं है तो इस तरफी पर कहीं ठीक हो भी नहीं सकती, फिर ये मन में भी डट जाएगा क्योंकि आप चाने हो जाओगे। अनजान व्यक्ति होते हैं जिनके एक व्यक्ति आई मेरे पास, ऐसे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी अतिथि आई है उनके साथ, वो कहने लगे जी हमने तो कोई फायदा नहीं हो रहा, 4 साल हो गए नाम दिए माँ व्यक्ति फायदा ना रहा, मतलब भैंस है ना भैंस 8 महीने के हो गए मैं दूध नहीं वाली 17 16 तेरे पिछली वैया जो है उसके 4 साल में जो भाई फलाना सुख का तेरा यो था और के हालत सुना हुआ तो मौत की हो रही थी रतरा गजब ये भैंस 8 महीने में ही ना हो तो इतना बात बिगड़ी गिर गई। तो इनके लिए कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ ने जो अर्जा नहीं सजाया और देखा देखी बंदी का यो रंग नहीं ठहरा, अब तो केवल सुख सुख के लिए लगे हुए अपने ज्ञान नहीं था, और ज्ञान जब हो जाएगा ना फिर मैं नहीं होते ना हो एक प्रार्थना रहेगी परमात्मा तेरे चरणा दूर ना हो जाए, मन मनो भैंस मरनी हो रहा मैंने लेट नहीं दूध होगी बच्चे भी गिरी गिरगी। और पहले उन देवता ने पूछते पूछते पिछली उसकी सुना भी बेहतरी मैं बोले भी पहले आता है 1 साल एक बिगड़ लेती, अरे 4 साल में एक भैंस 8 महीने नहीं दूध की ना हुई कई सब लीले और चढ़ दिए। तो ये हमारे अंदर क्योंकि अज्ञानता का कारण बनता है ये, इसलिए दास आपको बार बार यहाँ एक ट्रेनिंग देता है कि आप इस दुनिया के संसारिक लोगों में रहते हो उनका रंग नहीं चढ़ेगा, और साथ में आप ये अगर छोटा मोटा कोई कर्म दंड ज्यादा भी होगा हल्का चढ़ेगा तो आप हिम्मत नहीं हार सकते, इसलिए ज्ञान के लिए आपको बार बार बनाया जाता है। और या हमने आपसे के लेना देते भी शायद आपके ये फर्ज मिले, अरे एक हफ्ता पहले हम लगे सारी तैयारी कर परमात्मा की प्यारे बच्चे आवेंगे कि इनको कष्ट ना हो जावे, क्योंकि हम तो आपको सिक्के सेवक दे रखे हैं बिना पैसे के किराए के मजदूर उस परमात्मा के और आपके मजदूर हुमत आपका, और ये पल पल की चिंता रहती है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा कितनी उमंग के साथ आऊंगी उनको कोई यहाँ कष्ट ना हो, इनको कोई कष्ट होगा तो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा मालिक, और आपके लिए ही परमात्मा कर रहा है। दास की ड्यूटी लाई 8-8 घंटे बोलना 12-12 18-18 घंटे दास की रोटी लाई मालिक ने, उसी की शक्ति बोल रही है उसी की शक्ति से ये मिट्टी चल रही है, और वही आपके लिए ये सब क्रिया इस दास के द्वारा करवा रहा है। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा भी बालक हो बच्चे ने नहीं मालूम होता तेरे माता पिता तेरे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कंधे में बैठा हुआ मैं सर में थप्पड़ मारे ऐसा ही होता है छोटा सा बालक, फिर अगर दूध का होता था जी माँ है और फिर उसे नुहाओ दुआ वस्त्र का।